अध्याय तीन। पहले अंकुर फिर कोपलें। यह अध्याय मरकुस 4 आयत 26 से 29 पर आधारित है। बीज बोने वाले दृष्टांत ने बहुत पूछताछ की। कुछ सुनने वाले इकट्ठा हुए कि मसीह एक सांसारिक साम्राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आया था, और कई लोग उत्सुक और हैरान थे। उनकी स्पष्टता को देखकर मसीह ने अन्य दृष्टांतों का उपयोग किया। फिर मैं आत्मा में ईश्वर की कृपा के कार्य के लिए सांसारिक राज्य की आशा से मोड़ने की कोशिश की, और उन्होंने कहा, तो ईश्वर का राज्य है। जैसे कि एक आदमी भूमि में बीज डालता है और सो जाता है, और दिन में उठता है और बीज को पौधों में भरना चाहिए, कैसे ये वह नहीं जानता है। भूमि, क्योंकि जब फसल पक जाती है तो दराती से काटी जाती है। किसान जो दराती का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फसल पकी है, मसीह के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। ये वह जो अंतिम महान दिन पर पृथ्वी की फसल काटेगा। लेकिन बीज को बोने वाला उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो मसीह के पालन में श्रम करते हैं। बीज को बढ़ने और बड़े होने को कहा जाता है। मसीह अपने आरोप पर नहीं सोता है, लेकिन दिन रात चौकसी करता है। वह इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि बीज कैसे बढ़ता है। बीज के दृष्टांत से पता चलता है कि ईश्वर प्रकृति में काम पर है। बीज अपने आप में एक अंकुरित करने वाला सिद्धांत है, जिसे ईश्वर ने प्रत्यारोपित किया है। अभी तक अगर खुद को छोड़ दिया जाता है तो बीज में वसंत तक कोई शक्ति नहीं होगी। अनाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए मनुष्य के पास काम करने के लिए अपना हिस्सा है। उसे मिट्टी तैयार करके उसके बीज डालना चाहिए। उसे खेतों तक जान होगा, लेकिन एक बिंदु है जिसके आगे वो कुछ भी नहीं कर सकता है। मनुष्य की कोई भी शक्ति या बुद्धि जीवित पौधे से आगे नहीं ला सकती है। मनुष्य ने अपने प्रयासों को सबसे अधिक सीमा तक आगे बढ़ाया है। उसे अभी भी उसी पर निर्भर होना चाहिए जिसने अपनी सर्वशक्तिमान शक्ति के चमत्कारिक लिंक द्वारा बुआई और फिर से जुड़ाव को जोड़ा है। बीज में जीवन है, मिट्टी में शक्ति है, लेकिन जब तक दिन और रात में एक अनंत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब तक बीज को कोई लाभ नहीं मिलेगा। बारिश की बौछार प्यासे खेतों को नमी देने के लिए भेजी जाती है। सूरज गर्मी प्रदान करना है। दफन बीज को बिजली से अवगत कराया जाता है। निर्माता ने जिस जीवन को निहित किया होता है ईश्वर की शक्ति से। जैसे कि पृथ्वी उसकी कली को आगे लाती है, और जैसा कि बगीचे में आने वाली चीजों को बसंत ऋतु में बोया जाता है, इसलिए ईश्वर पवित्रता वसंत की प्रशंसा करेंगे। यशाया 61 आयत 11। जैसे कि प्रकृति में है, इसलिए आध्यात्मिक बुआई में सत्य के शिक्षक को दिल की मिट्टी तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे बीज बोना चाहिए, लेकिन वह शक्ति जो अकेले जीवन का उत्पादन कर सकती है, वह ईश्वर से है। ऐसा बिंदु है जिसके आगे मानवीय प्रयास व्यर्थ है। जब हम वचन का प्रचार करते हैं तो हम उस शक्ति को नहीं प्रदान कर सकते हैं जो आत्मा को जकड़ लेगी और धार्मिकता और वसंत की प्रशंसा करेगी। वचन के प्रचार में किसी मानव शक्ति से परे एक एजेंसी का कार्य होना चाहिए। केवल दिव्य आत्मा के माध्यम से वचन, ये वही है जो मसीह ने अपने शिष्यों को प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने सिखाया कि ये कुछ भी नहीं है जो उनके पास था, जो अपने मजदूरों के लिए बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं, लेकिन ये ईश्वर की चमत्कारिक शक्ति है जो उनके अपने जीवन की दक्षता प्रदान करता है। बोने वाला का काम विश्वास का काम है। बीज के अंकुरण और वृद्धि का रहस्य वह नहीं समझ सकता, लेकिन उन्हें उन एजेंसियों पर भरोसा है जिनके द्वारा ईश्वर वनस्पति को पनपने का कारण बनाते हैं। जमीन में अपना बीज डालने में वो स्पष्ट रूप से कीमती अनाज को फेंक रहा है जो उसके परिवार के लिए रोटी प्रदान कर सकता है, लेकिन वो केवल एक बड़ी वापसी के लिए एक अच्छा वर्तमान दे रहा है। वो बीज को दूर फेंक देता है और भरपूर फसल में इसे कई गुना इकट्ठा करने की उम्मीद करता है। इसलिए मसीह के सेवक अपने बोए गए बीज से फसल की उम्मीद करते हैं। अच्छे बीज एक समय के लिए ठंडे स्वार्थी सांसारिक दिल में झूठ बोल सकता है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये जड़ तो पकड़ चुका है, लेकिन बाद में जैसा कि ईश्वर की आत्मा पर सांस लेती है, छिपे हुए बीज झड़ते हैं और आखिरी बाद ईश्वर की महिमा के लिए फल देते हैं। हमारे जीवन काल में हम जानते हैं कि ये समृद्ध नहीं होगा, ये हमारे लिए कोई सवाल नहीं है। हमें अपना काम करना है और परिणामों को ईश्वर पर छोड़ना है। सुबह अपना बीज बो और शाम को हाथ मत रोको। समूपदेशक 11 आयत 61। परमेश्वर की महान वाचा यह बताती है कि जबकि पृथ्वी रहती है, बीज समय और फसल संघर्ष नहीं करेगा। उत्पत्ति 8 आयत 22। इस वायदे के विश्वास में किसान झुकता और बोता है। विश्वास से कम नहीं, हम आत्मिक श्रम के लिए आत्मा समर्पण कर रहे हैं, उनके आश्वासन पर भरोसा करते हुए। तो क्या मेरा वचन मेरे मुंह से निकल जाएगा? ये मेरे पास वापस नहीं आएगा, लेकिन यहां वही होगा जो मैं चाहता हूं और पूरा होगा जो चीज मैंने भेजी थी, उसमें समृद्धि है। भजन संहिता 126 आयत 6। वो आगे बढ़ता है और रोता है, अनमोल बीज बोता है, निरसंदेह फिर से आनंदित होकर आएगा, अपने साथ गट्ठा लेकर आएगा। भजन संहिता 126 आयत 6। बीज का अंकुरण आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत को दर्शाता है और पौधे का विकास मसीही विकास का एक सुंदर आंकड़ा है। जैसे कि प्रकृति में, इसलिए अनुग्रह में, विकास के बिना जीवन नहीं हो सकता है। पौधे को या तो बढ़ना चाहिए या मरना चाहिए। जैसे कि इसका विकास चुप और असंगत है लेकिन निरंतर है, इसलिए मसीह जीवन का विकास है। विकास के प्रत्येक चरण में हमारा जीवन परिपूर्ण हो सकता है, फिर भी यदि हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो नित्य उन्नत होगी। पवित्रीकरण जीवन भर काम है। जैसे जैसे हमारे अवसर बढ़ेंगे, हमारा अनुभव बढ़ेगा और हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। हम जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूत हो जाएंगे और हमारी परिपक्वता हमारे विशेषाधिकारों के अनुपात में होगी। वह पौधा तब तक बढ़ता है जो ईश्वर ने उसे जीवन देने के लिए दिया। यह अपनी जड़ों को पृथ्वी में भेजता है। यह धूप, ओस और वर्षा में होता है। यह हवा से जीवन देने वाले गुण प्राप्त करता है। तो मसीही की दिव्य एजेंसियों के साथ सहयोग करके विकसित करना है। हमारी असहायता को महसूस करते हुए हमें एक पूर्ण अनुभव प्राप्त करने के लिए दिए गए सभी अवसरों में सुधार करना है। जैसे पौधे मिट्टी में जड़ लेता है, वैसे ही हम मसीह में गहरी जड़ें जमाते हैं। जैसे ही पौधे को धूप, ओस और बारिश मिली, हमें अपने दिलों को पवित्र आत्मा के लिए खोलना है। काम शक्ति द्वारा नहीं, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा किया जाना है। सेनाओं के यहोवा का वही वचन है। ज़करिया 4 आयत 6। अगर हम मसीह पर अपनी सोच रखते हैं तो वह हमारे पास वर्षा के रूप में, वह हम पर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। धर्म के सूर्य के रूप में वह हमारे ऊपर उठेगा, अपने पंखों में चिकित्सा के साथ। मलाकी 4 आयत 2। हम लिली के रूप में विकसित हो गए, हम मकई के रूप में फिर से जीवित करेंगे और बेल के रूप में विकसित हो गए। होशे 14 आयत 5 71। हमारे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में मसीह पर लगातार भरोसा करके हमें उन सभी चीजों में विकसित हो गए जो हमारे प्रमुख हैं। गेहूं विकसित होता है, पहले ब्लेड, फिर बाले और उसके बाद मकई। बीज की बुआई में किसान का उद्देश्य और बढ़ता हुआ पौधा अनाज का उत्पादन है। वह भूखे लोगों के लिए रोटी और भविष्य की फसल के लिए बीज की इच्छा करता है। इसलिए दिव्य किसान अपनी श्रम और बलिदान के पुरस्कार के रूप में फसल की तैयारी करता है। मसीह पुरुषों के दिल में खुद को पुनः उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है और वह ऐसा उन लोगों के माध्यम से करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। मसीह जीवन का उद्देश्य फल असर है। आस्तिक में मसीह के चरित्र का प्रजनन कि यह दूसरों में पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। पौधे अपने लिए फल नहीं उगाता, ना ही आगे लाता है, बल्कि बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी देता है। यशाया 55:10। इसलिए कोई भी आदमी अपने आप के लिए नहीं जीता है, इसलिए दुनिया में अन्य आत्माओं के उद्धार के लिए मसीह के प्रतिनिधि के रूप में है। स्वयं में केंद्रित जीवन में कोई विकास या फल नहीं हो सकता है। यदि आपने मसीह को एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो आप खुद को टटोलना चाहते हैं और दूसरों की सहायता करने का प्रयास करते हैं। मसीह के प्रेम की बात है, उसकी अच्छाई के बारे में बताऊं, हर वो कर्तव्य करे जो स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। अपने दिल पर आत्माओं का बोझ लादें और अपनी शक्ति के द्वारा हर तरह से खोए हुओं को बचाना चाहते हैं। जैसे कि आप मसीह की आत्मा प्राप्त करते हैं, दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम और श्रम की आत्मा, आप आगे बढ़ेंगे और फल लाएंगे। आपके चरित्र में आत्मा की पकड़ बढ़ेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका विश्वास और गहरा होगा, आपका प्यार परिपूर्ण हो जाएगा। अधिक से अधिक आप सभी में मसीह की समानता को प्रतिबिंबित करेंगे, जो शुद्ध, महान और प्यारा है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सौम्यता, भल मनसाहत, विश्वास, संयम है। गलातियों 5:22-23। ये फल कभी नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन अनंत जीवन के लिए अपनी तरह की फसल के बाद पैदा होगा। जब फल को सामने लाया जाता है, तुरंत उसे दराती से काटते हैं, क्योंकि फसल तैयार है। मसीह अपनी कलीसिया में स्वयं के प्रकट होने की लालसा के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। जब मसीह के चरित्र को उसके लोगों में पूरी तरह से पुनः पेश किया जाएगा, तो वो उन्हें अपने रूप में दावा करने के लिए आएगा। ये हर मसीही का विशेषाधिकार है, जो न केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने की जल्दबाजी करता है, बल्कि दूसरा पत्रस 3:12, सभी जो अपने नाम को उसकी महिमा के फल मानते हैं, कितनी जल्दी पूरी दुनिया में बोए जाएंगे। सुसमाचार के बीज के साथ जल्दी से अंतिम महान फसल पक जाएगी और मसीह कीमती अनाज इकट्ठा करने के लिए आएगा।